हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार सोनल क्या कहने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने सोनल की ओर देखकर कहा था, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मेरी यादें मिटा दोगी? आखिरकार हो कौन तुम? क्या तुम वाकई कोई भूत प्रेत या चुड़ैल तो नहीं हो? देखो, अगर तुम वाकई कोई चुड़ैल या आत्मा या भूत प्रेत भी होना तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं फिर भी तुम्हें इस तरह से प्यार करूंगा जितना कि मैं तुम्हें करता हुआ आया हूँ। जैसे ही अक्षत ने इस तरह की बातें की, अब तो सोनल के लिए प्रॉब्लम के लिए और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अक्षत का इतना ज्यादा अपने लिए पागलपन देखकर कहीं ना कहीं सोनल को अच्छा भी लग रहा था, लेकिन वो उसके पागलपन को हवा नहीं देना चाहती थी। इसीलिए उसने उसे कहा था, तुम्हें शायद जरूर कुछ न कुछ गलतफहमी हुई है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कोई चुड़ैल या भूत प्रेत नहीं हूँ, पर हाँ, मैं अपने पास इतनी शक्तियाँ जरूर रखती हूँ कि मैं तुम्हारी सारी यादें मिटा सकती हूँ। जैसे ही सोनल ने ये कहा, अक्षत उसकी ओर देखकर कहने लगा था, तुम मेरे दिल दिमाग से यादें तो मिटा दोगे, लेकिन दिल का क्या करोगे? ये दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम से धड़कता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाकर सुन लो। ऐसा कहकर अचानक अक्षत ने सोनल का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया था, और सोनल परी सीधा अक्षत की सीने से जा लग गई थी, और जहां पर उसे अक्षत के दिल की धड़कन सुनाई देने लगी थी। सोनल परी पूरी तरह से कसमाकश का शिकार हो गई थी। उसका दिल ही नहीं कर रहा था कि वो अक्षत से थोड़ा सा भी दूर हुए, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए अक्षत को खुद से दूर करते हुए कहा था, मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, समझे तुम? तभी अक्षत उसकी ओर देखकर कहने लगा था, आखिरकार क्या कमी है मुझ में? जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा, तो तुम मेरी मोहब्बत को कबूल क्यों नहीं कर लेती हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ या तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो, तो मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे देता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम सिर्फ सब कुछ छोड़कर मेरी जिंदगी में आ जाओ और मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ, या फिर तुम अपने हाथों से मेरी जान ले लो। जैसे ही सोनल परी ने अक्षत की इस तरह के पागलपन वाली बातें सुनी, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, और वो हैरानी से उसकी ओर देखकर कहने लगी थी, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तुम्हें आखिरकार मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मैं इंसान नहीं हूँ। जैसे ही अक्षत ने ये सुना, वो हैरान हो गया और सोनल की ओर देखकर कहने लगा था, अच्छा तो तुम इंसान नहीं हो, क्या अभी तुम फालतू की बातें कर रही हो? अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल नहीं है तो मेरी जान ले लो ना, इस तरह की फालतू की बातें करने की क्या जरूरत है? जैसे ही अक्षत ने ये कहा, सोनल ने अपने माथे पर हाथ मार लिया था और कहने लगी थी, अभी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुमने ये बात नोटिस की है? तुम्हारे घर में तो तुम्हारे कमरे में यहाँ मौजूद हो, वो भी तुम्हारी सारी सिक्योरिटी को पीछे छोड़ते हुए, और किसी ने मुझे देखा तक नहीं। क्या तुमने एक बार भी सोचा कि मैं अचानक से यहाँ कहाँ से आ गई? मैं अपने जादू से यहाँ आई हूँ, क्योंकि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक परी हूँ। क्या आया आया आया! जैसे ही सोनल ने ये कहा, अक्षत उसकी ओर कुछ पल देखता रहा था और अगले ही पल जोरों से हंसने लगा था और कहने लगा था, ओ तो आप एक परी हैं, तो मैं कौन हूँ? मैं एक जिन हूँ, मैं एक दानव हूँ, मैं तो तुम तो मुझसे मोहब्बत कर सकती हो, आखिर मेरे जैसा हैंडसम लड़का अभी तुम्हें आखिरकार मिलेगा कहाँ? जैसे ही सोनल परी ने देखा कि अक्षत ने उसकी कही हुई बात को इस तरह से मजाक में उड़ा दिया है, सोनल परी काफी हद तक हैरान थी, और अगले ही पल उसने अपने हाथ को गोल गोल घुमाते हुए तुरंत ही अपना परी वाला वेश अक्षत के सामने पेश कर दिया था। अक्षत ने देखा कि सोनल परी ने एकदम सफेद रंग का बड़ा ही खूबसूरत हीरे मोती लगा हुआ फ्रॉक पहना हुआ था, और इतना ही नहीं, हल्के हल्के पिंक कलर के उसके पीछे बड़े बड़े दो पंख थे, एक जादुई छड़ी उसके हाथों में थी, इतना ही नहीं, एक गोल्डन रंग का शानदार मुकुट उसके माथे पर था। जैसे ही अक्षत ने ये देखा, वो पूरी तरह से हैरान हो गया था, और अब तो यकीन करने वाली कोई बात थी ही नहीं, उसकी हंसी, जो वो पहले हंस रहा था, एकदम से उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। अक्षत की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि सोनल परी जो कह रही थी वो इस तरह से बिल्कुल सच हो सकता था। अब सोनल परी ने परी वाले रूप से ही अक्षत से, अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन आया? क्या तुम अब जाकर समझो कि तुम्हारा और मेरा मिलन क्यों नहीं है? इसीलिए मैं तुमसे कह रही थी, और इसीलिए मैं तुम्हारी मोहब्बत को नहीं अपना रही थी, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। तुम एक इंसान हो और मैं एक परी हूँ, और इंसानों और परी का कभी कोई मेल नहीं होता। जैसे ही सोनल परी ने ये कहा, अचानक से अक्षत अपने खुद को घुटनों के बल बैठ गया था, और अचानक से उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे, और वो सोनल परी की ओर देखकर कहने लगा था, ये खुदा, ये मुझे क्या हो गया? मुझे मोहब्बत भी पहली बार हुई है, तो वो भी एक परी से, और वो परी मुझ जैसे मामूली इंसान की मोहब्बत को कबूल कैसे करेगी। ऐसा कहकर अक्षत की आंखों से धारदार आंसू निकलना शुरू हो गए थे और सोनल परी अक्षत की इस तरह से बेबसी और लाचारी देखकर पूरी हद तक हैरान थी। वो उसे समझाना चाहती थी, उसे इस बात के बारे में बताना चाहती थी कि उसे इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए, उसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। एक बार को सोनल परी का मन किया कि क्यों ना वो अपनी जादुई छड़ी को घुमाकर अक्षत के दिल की सारी यादों को मिटा दे। लेकिन कहीं ना कहीं सोनल परी को बार बार अक्षत उसकी मोहब्बत, उससे मोहब्बत का इजहार करना, उसके लिए पागलपन वाली बातें करना, उससे प्यार करने की कोशिश करना, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। इसीलिए वो चाहकर भी अक्षत की यादों को नहीं मिटा पा रही थी। तभी सोनल परी ने एक बार फिर अपना नॉर्मल इंसानी वेश धारण कर लिया था और अक्षत की ओर देखकर कहने लगी थी, देखो अक्षत खुराना, मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हारी यादें मिटा सकती हूं, लेकिन तुम जानते हो मैं ऐसा क्यों नहीं कर रही हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा इसीलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम पहले इस बात को मानो कि तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है और तुम ये मोहब्बत का ख्याल अपने दिलो दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो, क्योंकि मैं यहाँ पृथ्वी लोक पर सिर्फ और सिर्फ कुछ जरूरी मकसद के तहत आई हूँ और जैसे ही मेरा वो काम पूरा हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे जाने के बाद तुम्हें किसी तरह की प्रॉब्लम हो या तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पागल हो जाओ। जैसे ही सोनल ने ये कहा, अक्षत ने अगले ही पल अपने आंसू पूंछकर सोनल परी की ओर देखते हुए कहा था, अगर तुम पृथ्वी लोक पर किसी जरूरी काम से आई हो और उसके बाद तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन क्या इस बीच में मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूँ। तब सोनल हैरानी से अक्षत की ओर देखने लगी थी और कहने लगी थी, आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या कहना चाहते हो। तभी अक्षत ने सोनल की ओर देखते हुए कहा था, मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम पृथ्वी पर कितने भी दिन के लिए हो, जितने भी समय के लिए हो, उसमें तुम मेरी बनकर रहो। देखो, मैं नहीं जानता मुझे तुमसे मोहब्बत क्यों हो गई है, लेकिन मोहब्बत कुछ परी इंसान देखकर थोड़े ना होती है।
और मैं तुम्हें अपने दिल पर कितना बड़ा मकाम दे चुका हूँ कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें भी मेरी चाहत कबूल करनी होगी। और हाँ, अगर तुम परीलोक जाना चाहे तुम जा सकती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ जितने दिन भी तुम यहाँ पृथ्वी लोक पर हो मेरे साथ मेरी मोहब्बत बनकर रहो। अब अक्षत की इस तरह की बातें सुनकर सोनल पूरी तरह से हैरान हो गई थी और अक्षत की ओर देखकर कहने लगी थी, ठीक है, तुमने जो कहा है उसके बारे में मैं तुम्हें सोचकर जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर सोनल अक्षत खुराना की आंखों के सामने से ही खड़े खड़े गायब हो चुकी थी और अक्षत अपनी आंखें मसलते रह गया था और सीधा बेड पर निढाल सा गिर पड़ा था और सोचने लगा था कि उसे मोहब्बत भी हुई तो एक परी से हुई, जो कि उसकी जिंदगी में केवल कुछ पल के लिए ही रहेगी और न जाने रहेगी भी या नहीं रहेगी। न जाने उसका क्या फैसला होगा, ये सोचते हुए अक्षत न जाने कब नींद की वादियों में उतर गया, उसे कुछ पता नहीं चला था। वहीं दूसरी ओर रीत परी जल्दी ही अपनी जादुई माला पहनने के बाद गायब होकर, और मैं तुम्हें अपने दिल पर कितना बड़ा मकाम दे चुका हूँ कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें भी मेरी चाहत कबूल करनी होगी। और हाँ, अगर तुम परीलोक जाना चाहे तुम जा सकती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ जितने दिन भी तुम यहाँ पृथ्वी लोक पर हो मेरे साथ मेरी मोहब्बत बनकर रहो। अब अक्षत की इस तरह की बातें सुनकर सोनल पूरी तरह से हैरान हो गई थी और अक्षत की ओर देखकर कहने लगी थी, ठीक है, तुमने जो कहा है उसके बारे में मैं तुम्हें सोचकर जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर सोनल अक्षत खुराना की आंखों के सामने से ही खड़े खड़े गायब हो चुकी थी और अक्षत अपनी आंखें मसलते रह गया था और सीधा बेड पर निढाल सा गिर पड़ा था और सोचने लगा था कि उसे मोहब्बत भी हुई तो एक परी से हुई, जो कि उसकी जिंदगी में केवल कुछ पल के लिए ही रहेगी और न जाने रहेगी भी या नहीं रहेगी। न जाने उसका क्या फैसला होगा, ये सोचते हुए अक्षत न जाने कब नींद की वादियों में उतर गया, उसे कुछ पता नहीं चला था। वहीं दूसरी ओर रीत परी जल्दी ही अपनी जादुई माला पहनने के बाद गायब होकर सीधी काली शक्तियों के मालिक अमित के कमरे में चली गई थी। वो सबसे पहले उसे उसी को ढूंढना था जिस शीशी के बारे में तारा परी ने उसके जहन में डाला था, लेकिन जैसे ही वो कमरे में गई और उसने अमित की ओर देखा तो उसकी सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे हो गई थी, क्योंकि उस वक्त काली शक्तियों का मालिक अमित सिर्फ एक छोटे से कपड़े में मल्लिका के पास बिल्कुल न्यूड लेटा हुआ था। उसका एक हाथ मल्लिका के पेट पर था और उसका सर मल्लिका के बेहद करीब था। जैसे ही रीत परी ने ये देखा, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और वो सोचने लगी थी, इसकी शादी तो धारा के साथ होने वाली है और ये यहाँ किसी और के साथ इस तरह से सोया हुआ था। क्योंकि रेत परी को वहां आते ही अमित के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। तारा ने पहले ही सारी चीज उसके जहन में डाल दी थी कि किस तरह से काली शक्तियों का मालिक अमित घर में आया था और उसका धारा से क्या रिश्ता था और मल्लिका से उसका क्या रिश्ता था, और इतना ही नहीं, वो अमन का सौतेला भाई था। तो इसीलिए रीत परी और काफी हद तक मल्लिका को इस तरह से ऐसी हालत में अमित के साथ देखकर हैरत में थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार लोगों के बीच चल क्या रहा है। तभी रीत परी ने उन्हें देखने के बाद जल्दी ही उसे पूरे कमरे में अपनी नजरें दौड़ाना शुरू कर दिया था। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में तारा परी बताई हुई वो लाल रंग की शीशी थी, जो तारा परी को थोड़ी सी अजीब लगी थी, लेकिन उसे कहीं भी कोई शीशी दिखाई नहीं दे रही थी। और तभी रीत परी ने देखा कि काली शक्तियों का मालिक अमित अचानक से उठकर बैठ गया था, और जैसे ही वो उठकर बैठा, रीत परी की धड़कन बढ़ गई थी। उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि अमित को इस बात का एहसास हो गया हो कि इस वक्त उसके कमरे में कोई ना कोई है। रीत परी काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो तो इस वक्त गायब है, तो उसे कोई भी देख नहीं पाएगा, तो इसीलिए थोड़ी सी तसल्ली के साथ वो वहां खड़े रही थी। तभी अमित उठा था और उठकर उसने बराबर में लेटी हुई बिल्कुल न्यूड मल्लिका की ओर देखा था। मल्लिका को देखने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी और उसने आगे बढ़कर मल्लिका को चूम लिया था, और जैसे उसने मल्लिका के होठों को किस, मल्लिका तुरंत उठकर बैठ गई थी और उसने एक चादर से खुद को कवर करते हुए अमित की ओर देखते हुए कहा था, हुकुम कीजिए मालिक, मुझे क्या करना होगा। तभी अमित उसकी ओर देखकर कहने लगा था, एक काम करो, तुम सबसे पहले फटाफट अपने कपड़े पहनो, क्योंकि अब सुबह होने में ज्यादा समय नहीं बचा है, और अगर इस तरह से तुम्हें किसी ने मेरे कमरे में देख लिया तो किसी को हम पर शक हो सकता है, और हमें अभी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना है। वैसे भी रात को सोने के लिए मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत होती है, क्योंकि मैं किसी ना किसी लड़की को अपने पास में रखकर सोना चाहता हूँ, ताकि मैं सुकून की नींद सो सकूँ। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने पर मेरी क्या हालत हो जाती है, इसीलिए आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगा, और जब तक धारा को मैं अपनी बीवी नहीं बना लेता, तब तक तुम्हें मेरे साथ इसी तरह से सोना होगा, समझे तुम। तभी मल्लिका सर झुकाकर बैठी हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आग सेक रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी काली शक्तियों के मालिक अमित की जान ले ले, क्योंकि अमित ने उसे अपने फायदे के लिए कितनी ही बार इस्तेमाल किया था और उसे बड़ी ही बुरी तकलीफ दी थी, जहां मर्जी उसे काट लेता था, जिस तरह से उसके साथ बर्ताव किया करता था। लेकिन अब मल्लिका का सब्र जवाब देने लगा था और वो बस गिन गिनकर दिनकर काटने लगी थी। लेकिन आज उसे इस बात की तसल्ली थी कि आज तो अमन उसका हो जाएगा, और एक बार अमन उसका हो जाए और अमन को पाने के बाद तिलस्मी पत्थर उसे मिल जाएगा, फिर वो सबको मजा चखा सकती थी। कहीं ना कहीं मल्लिका शुरू से एक ही बात सोचती आ रही थी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, और अमन के इतने करीब होकर भी वो अमन को छू नहीं पाती थी। क्या मल्लिका कभी कामयाब हो पाएगी? क्या रीत परी दानव को ढूंढ पाएगी? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।